नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। सीपी राधाकृष्णन आज सुबह नई दिल्ली में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और पांडुलिपि डिजिटलीकरण पर एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। सूचना और संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए आज INS अरावली को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, भारत और अमेरिका संबंध विश्व में विशेष रूप से महत्वपूर्ण। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने तख्तापलट की साजिश के मामले में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग को 7 विकेट से हरा कर की। अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी। वे इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित हुए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल किए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। RSS स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करते हुए वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। श्री राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बतूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें वस्त्र के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने कोची के कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फरवरी 2023 में श्री राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
कल शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। इस सम्मेलन में भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करने और इसे वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में रखने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रमुख विद्वान, संरक्षणवादी, प्रौद्योगिकीविद और नीति विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण तकनीक, मेटा डेटा मानक और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम की काशी यात्रा इस शहर के सांस्कृतिक महत्व और भारत तथा मॉरिशस के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए और भी खास हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने परस्पर सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए। भारतीय नौसेना आज गुरुग्राम में INS अरावली को अपने बेड़े में शामिल करेगी। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। INS अरावली केंद्र को नौसेना के सूचना और संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार केंद्रों को सहायता मिलेगी। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। एक रिपोर्ट।
इस कार्यशाला का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं और कानूनी तथ्यात्मक तथा नियम आधारित सूचनाओं को समय पर तथा समन्वित तरीके से संप्रेषित करने के महत्व को बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में जनता को गुमराह करने वाली गलत सूचनाओं में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीईओ कार्यालयों के संचार तंत्र को तथ्य आधारित प्रतिक्रियाओं के साथ भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने योग्य बनाना है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से संसद को सार्थक बहस, चर्चा और संवाद का ऐसा मंच बनाने का आह्वान किया है जहां राष्ट्रीय महत्व और जनहित के मुद्दों को उठाया जा सके। बेंगलुरु में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री बिरला ने विधायकों से राजनीतिक संबद्धता से हटकर जनप्रतिनिधि के रूप में विचार विमर्श में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने सदन की कार्यवाही के गिरते स्तर पर भी निराशा व्यक्त की।
हम सबके लिए चिंता का विषय, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, किस सदन में चर्चा, संवाद, विधेयकों पे चर्चा, उसकी गरिमा गिरती जा रही है और गरिमा बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, चुनके आए सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम इन संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा की गरिमा के अनुसार हर विषय पर चर्चा संवाद के मंच बनाएं। आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति के विषय सदनों में नहीं आना चाहिए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST दरों में सुधार की घोषणा की थी। उनका ये सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब GST परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत सरकार ने नई आवश्यक वस्तुओं को GST से पूरी तरह मुक्त करके आम आदमी पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब GST से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना GST वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे यह लोगों के लिए और भी किफायती हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से GST हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब शून्य GST श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक हैं। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।
Under President Donald Trump's strong leadership, I'm committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. India is one of the most important relationships our nation has in the world.
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश और देश में लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 2018 में राष्ट्रपति चुने गए बोल्सोनारो 2022 का चुनाव हारने के बाद जबरन सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करने के दोषी हैं। खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने कल हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 144 रन के जवाब में बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते मुकाबला आसानी से जीत लिया। लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज पाकिस्तान और ओमान आमने सामने होंगे। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अगर बात करें टेनिस की तो टेनिस में सुमित नागल आज बील के स्विस टेनिस एरिना में डेविस कप विश्व ग्रुप के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारतीय चुनौती चुनौती की अगुवाई करेंगे। एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली डबल्स मुकाबले में भारत की चुनौती पेश करेंगे। और उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे ग्रैंड स्विस के सातवें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश को कल 16 वर्षीय तुर्की के एडिस गुरेल से हारकर लगातार तीसरी बार पराजित होना पड़ा। इस बीच भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने ईरान के परम मकसुदलू पर रोमांचक जीत के बाद बढ़त बना ली है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। और अगर बात करें मुक्केबाजी की तो भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जैस्मीन लेम्बोरिया, नुपुर श्योराण और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की गाथा खड़के शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत ने पुरुष टीम वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण और डबल्स टीम में रजत पदक जीता है। खेल खबरों में बस आज इतना ही।
मौसम विभाग के अनुसार आज मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, व्यापार लोकल करेंसी में, मॉरिशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख के चयन को लेकर चल रही गहमागहमी भी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, दिन भर चला बैठकों का दौर लेकिन सहमति नहीं, नेपाल में नेतृत्व पर बटे नौजवान। 144 भारतीयों को काठमांडू से विशेष विमान के जरिए भारत लाने की खबर भी पत्र में है। देशभर में एक साथ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी में आयोग, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, 2,00,000 नए BLO जुड़ेंगे, हरेक के जिम्मे 250 घर होंगे। देशबंधु ने आत्मनिर्भरता शीर्षक से लिखा है, नौसेना को मिला 3D एयर सर्विलांस रडार, भारत में बने पहले लैंसा एंड रडार को नौसेना युद्धपोत पर सफलतापूर्वक तैनात किया गया।
धन्यवाद नवीन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CP राधाकृष्णन आज सुबह नई दिल्ली में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और पांडुलिपि डिजिटलीकरण पर एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। सूचना और संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए आज INS अरावली को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, भारत और अमेरिका संबंध विश्व में विशेष रूप से महत्वपूर्ण। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने तख्तापलट की साजिश के मामले में पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को 27 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग को 7 विकेट से हरा कर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।